ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं हैं। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण।
ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित किस प्रकार हो सकते हैं?
कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
हमारा भक्त है और जो पुराने भक्त हो जाते हैं वो थोड़ी डिले पड़ जाए कि उनको सुखी हो जाता है। उन्होंने लड़की की शादी कर दी, लड़की भी नाम ले रही थी, 6 साल हो गए बच्चे ना हुए और सत्संग माना छोड़ गए, कभी आओ कभी ना आओ। ये दास के ऊपर ये झूठे केस बनाए, जेल गया, जेल से जब वापस आए जमानत हुई तो वो रोवे, सारा बुरा हाल हो रहा, 6 साल हो गए कोई बच्चा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो उनसे समझाया कि तुम यहां आओ, भक्ति करो, सेवा करा करो, सेवा नहीं करते तुम ना सत्संग माते। अब वो सारा धक्के खा लिए इतना, और भी डॉक्टर डॉक्टर वैसे और किसी झाड़ी जुड़ाने तो नहीं गए वो, तो परमात्मा की दया हुई, यहां लगे भाई महीने सेवा करें, तुम्हारे बर्तन साफ करें, रोटी पवा, भगत भी आवे व बेटी भी आवे। साल भर के अंदर उसको पुत्र दे दिया परमात्मा ने। तो कहने का भाव यह है कि कुछ ऐसे कर्म हैं जो हमने शारीरिक कर्म करके ही उसका छुटकारा होता है, पाप कटते हैं। कुछ ऐसे कर्म हैं जो वचन से कटते हैं, आशीर्वाद से कटते हैं। तो पुण्यात्माओं कुछ ऐसे हैं जो सुमरण से ही कटेंगे। तो हमने अपना रोग कटाना है तो सारी मेडिसिन लेनी पड़ेगी, पीण की भी, मालिश की भी, कैप्सूल भी, इंजेक्शन भी। दीर्घ रोग आपका हो गया, क्यों कलयुग आए। तो परमात्मा यहां बताते हैं कि राम नाम कड़वा लागे मीठे लागे दाम, और दुविधाम दोनों गए माया मिली ने राम। अपुणात्मा ये कोई सौभाग्य आपका जो ये सत्संग आपको सुनने को मिला। अब परमात्मा क्या बताते हैं कि सत्संग के अंदर आने वाले पुण्यात्माओं को सबसे बड़ी बाधा होती है लोक लाज, और लोक लाज में आकर के आप भगवान से दूर हो जाओगे तो परमात्मा आपकी मदद नहीं करेगा। लोक लाज की कोई भी मर्यादा आपने अहम महत्व नहीं देना है, क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध है, वो मैन मेड है, वो आदमी की बनाई हुई है। और जो परमात्मा का विधान है हमने वो स्वीकार करना है, यदि परमात्मा से लाभ लेना है तो। अब क्या बताते हैं परमात्मा, कहते हैं लोक लाज ना कीजियो, निर्भय हो रहिए, ये मन साधो दीजिए तो गोविंद पाइए। अब जैसे मीराबाई एक ठाकुरों की लड़की थी, आज से 600 वर्ष पहले लगभग ठाकुर लोग अपनी बहू बेटी बहनों को बाहर नहीं जाने देते थे, पर्दों में रखा करते थे और स्वयं खेतों में काम करते या वैसे बाहर नहीं जाने देते थे, वो अपनी बेइज्जती मान्या करते। अब मीराबाई कोई ऐसा हंस था, काल ने इसी जगह फिट कर दिया कि ले करिए भक्ति, अब तुझे कौन करण देगा भक्ति। इस परमेश्वर की बच्ची थी, आत्मा थी कबीर जी की, तो वहां उसको ऐसी जगह जन्म दे दिया कि वो घर तो बाहर नहीं निकल सके थी। लेकिन संत और भक्त ये उल्टे नहीं हट्या करें। संत सिंह और सूरमा ये अपने जिस उद्देश्य पर चलते हैं उसको पूरा करके दम लेते हैं। तो मीराबाई को जब जाने लगी मंदिर में, घर वाले भी नाराज होते थे, मां भी धमकाया करती थी पर वह नहीं मानती थी, और भी बहुत से कहते थे कि मीरा तो मत जाकर, तेरे बारे में पता नहीं लोग के कहे। तो मीरा यही कहा करती, ईब तुम चाहे बूंदी को चाहे गुंडी को, अब मेरे तो मन में समागी भगवान की भक्ति में छोड़ नहीं सकती। तो पुण्यात्माओं, इसी प्रकार हमने इस परमात्मा के मार्ग पर चलने के बाद संसारी लोगों को नहीं देखना। अब मीराबाई को जब परमात्मा के महिमा का ज्ञान हुआ, पहले तो मंदिर में जाती थी, मूर्ति पूजा करती थी, फिर भी उसको बहुत से लाभ होते थे। जैसे एक बार उसको विष पिलाया गया, विष पिला दिया तो भी मीरा मरी नहीं, और जब तक वो केवल श्री कृष्ण की भक्ति ही करती थी। और एक बार उसको सांप भेजा गया उसके पास, उसके देवर ने, क्योंकि पति की मृत्यु हो गई थी शादी के उपरांत, देवर ने जो है ना, पहले पति था उसका वो अच्छा था, धार्मिक व्यक्ति था, वो मीरा को मना नहीं करता था कोई बात नहीं, राजा था तो इसलिए कोई उसका आगे बोलिया भी ना करता, वो मंदिर में जाती थी। फिर मंदिर में जाना उसके पति की मृत्यु के बाद उसके देवर ने बंद कर दिया, वो उसको राज प्राप्त हो गया। वो इसलिए कि हमारी बेइज्जती होती है, हमारी विधवा भाभी जो है मंदिर में जाती है, लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे, इस लोक लाज में आकर उसने अपनी भाभी को यानी मीराबाई को पहले तो समझाने की चेष्टा की, नहीं मानी तो उसको जहर दे दिया, जहर तो भी ना मरी। एक बार एक सपेरा बुलवाया उसको गारडू के, तू एक ईसा सर्प दे दे इसको मार, इसने खा ले बेराना पट्टे, लोग ने सोचे सर्प न डस दी, ऐसा ही किया गया। एक सर्प क्या था, उस राणा के पुत्र का जन्मदिन था, सब रिश्तेदार इकट्ठे कर रखे, और उधर से उसने सर्प मंगा लिया, ये सांप गारडू से भी ऐसा ला दे। डिब्बा खोलते ही उसने क्या किया, गहने के डिब्बे में सांप डाल दिया, गहने के बॉक्स में, आभूषण के बॉक्स में एक वो सर्प डाल दिया, और एक बंदी ते कहा कि जा इस मीरा को दे दे, ये हार पैर लेगी गल में, और उसको कहना कर के आदेश है राणा का, ये हार पहनना होगा, कदे मेरी बेइज्जती करवा दे, रिश्तेदार इकट्ठे हो रहे हैं, और न्यू ना कह दे अपनी भाई को अन रहा, और इसको भाई की पत्नी को सुख सुविधा नहीं दे रहा, कदे मेरी बेइज्जती करवा दे, इसलिए गहने पैर ले गया जिया। अब बंदी ने जाकर वो बॉक्स रख दिया, डिब्बा रख दिया, सारा आदेश मीरा को सुना दिया। मीरा ने सोचा भाई ने कि अभी मेरे लिए तो गहना मट्टी है, और यो निकम्मा मानने को नहीं, सौ सौ बेइज्जती बकवाद करेगा, पड़ा रहेगा मगा, इसने गले में डाल लूंगी। अब उसने क्या किया, वो डब्बा खोला बंदी के सामने, इतना सुंदर हार बन गया उस सांप का, और मीरा ने गले में पहन लिया, और वो आ लिया साथ साथ कि वो तो मरली होगी, और सांप वहीं निकलना जा वहीं रोक लेंगे, रोड़ा मचा दूंगा, शोर मचा दूंगा, बाजियो बागियो, सांप लड़ गया, सर्प लड़ गया, और इसने सारे रिश्तेदार आ रहे, मेरा शक भी ना होगा कि इसने मरवा दी। ऐसी राजनीति से उसने ये कर्म किया था, वो साथ साथ आ गया, आकर देखा मीरा तो हार पहने बैठी, और बंदी चली गई। अब वो राणा कहने लगा, यू हार कितने लाई तुम, इसलिए मंदिरों में जाती थी, मुझे पहले शक था तो बदमाश औरत है, ये कहां से लाई तुझे हार। मीरा के आंखों में पानी आ गया कि आपने तो भेजा था, अब ना पैरूं तो तू ऊ मारे, और पैर लूं तो इब देख मेरे साथ क्या कर दिया, आपने भेजा था इस बक्से में, और वह बंदी लाई थी कि ये हार मैंने भेजा था, कहा आपने भेजा था। वह बंदी नौकरानी बुलाई, कहने लगी राणा के भी सकना हुआ कि वही बॉक्स है, ये कहा आपने दिया था, सीधा यहां ला के रखा था। उस टाइप का और कोई बॉक्स घर में नहीं था। अब पुण्यात्मा इस तत्व ज्ञान से हमने एक निष्कर्ष निकालना है कि मीराबाई पिछले पुण्य कर्मों से पिछले जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्मों के कारण आज भी पूर्ण परमात्मा कबीर जी ही उसकी इन आपत्तियों में रक्षा कर रहा था। और मीराबाई ने सोचा थी कि मैं कृष्ण जी की भक्ति करती हूं, कृष्ण जी मेरी मदद कर रहा है। पुण्यात्मा ये कृष्ण जी के सतर का काम को ना जो परमात्मा किया करते हैं। कृष्ण जी अपने भाणजे जीवित नहीं कर सकया, कृष्ण जी के पैर में तीर लग गया उसने जीवित नहीं कर सकया, कृष्ण जी के सामने पूरा यादव कुल नष्ट हो गया, आपस में लड़ मर के कतले आम होगी तब रक्षा नहीं कर सके। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य और परमात्मा इति उदारते, यह लोक त्रम आविश्य विभर्ति अवेश्वर है, वो परमात्मा है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण, किसी के संस्कार का जो कुछ है वो भी वही देता है। हम जिस भी इष्ट की पूजा करते हैं उसके निमित्त कर देते हैं कि इसने मुझे ये लाभ दे दिया, और वो परमात्मा मान बड़ाई का भूखा नहीं है क्योंकि वो तो सर्वसंपन्न है। अब मीरा बाई ये सोच रही थी ऐसे ऐसे लाभ मुझे मेरी भक्ति से हो रहे हैं, और परमात्मा कहते हैं सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, गोता मारू स्वर्ग में जा बैठू पाताल, और कह कबीर में ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। मीराबाई मंदिर में जाती थी, उसके देवर ने खूब अंगा ला लिया पर वह डटी नहीं, और फिर उसने सोची भाई के करू या मारे तो मरती ना, सर्प भेजा जो आर बन गया, और बेशरम फिर भी ना मानने लोग भगवान भी कोई चीज है, कर्महीन इंसान नहीं माना करते, बकवाद ही किया करते। अब जिस मंदिर में वो जाया करती मीरा, उसी के रस्ते में वृक्षों का अच्छा बगीचा सा था, वहां एक भक्त का मकान था, तो उसमें परमात्मा कबीर जी और रविदास जी चमार जाति से और कबीर जी जुलाहा जाति से, वैसे तो परमात्मा थे फिर भी जो वर्ण था उस हिसाब से बताया जा रहा है, तो वहां दोनों सत्संग कर रहे, वहां बैठे कबीर जी बैठे 10-20-50 भक्त भक्तनी बेबे बहन इकट्ठी होगी। मीराबाई जो मंदिर में जा रही थी उसने देखा कि भक्त बैठे हैं, अवश्य कोई हरिचर्चा हो रही होगी, तो पहले अपने क्रियाक्रम मंदिर में करके वो वापस आई तो देखा कि चल थोड़ी देर विचार सुनते हैं, साधु संत दिखाई देते हैं, वो वहां चली गई। अब परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाई, वह गई थी 10 मिनट की खातिर और लग गया उड़े 2-3 घंटे। अब सृष्टि रचना जो सुनाई परमेश्वर कबीर जी ने, मीराबाई का तो कभी पारा आई होवे, कभी बीपी आई होवे, कभी लो होवे, फिर लास्ट में सत्संग के उपरांत मीराबाई ने कहा कि हे महात्मा जी, कबीर साहब से बोली, हमने तो आज तक ये कथा आपने जो सुनाई है, जो कहानी सुनाई है, कितनी सुनी, और कृष्ण जी से ऊपर मैं तो कोई भगवान मानती नहीं, अब इससे कहो ऐसे ऐसे मेरे साथ घटनाएं घटी, मुझे बहुत लाभ हुआ, मेरा बचाव किया। परमात्मा बोले बेटी अब ठीक है, जब आपके साथ ऐसी घटना घटगी तो आप मान ही नहीं सकती किसी दूसरे को, अब इसके बारे में मैं क्या बताऊं, मैंने जो कहना था कह दिया, पर एक काम कर। मीराबाई कहती थी मुझे श्री कृष्ण जी मेरे साथ साक्षात बातें करते हैं, परमात्मा बोले बेटी तू ऐसे करिए, तो कृष्ण जी ने बूझ लिए तेरे ते भी तेरे से ऊपर कोई शक्ति है कि नहीं, तेरा कृष्ण कह दे जब तो मान लेगी, कहां फिर तो मैं मान लूंगी। तो मीराबाई ने जाकर फिर अपना जैसे भी प्रार्थना की और कहते हैं श्री कृष्ण जी वहां प्रगट हुए कि मीरा बोल क्या बात है, कि भगवान आज मैंने ऐसे ऐसे एक संत से कथा सुनी है, क्या ये सत्य है? पुण्यात्माओं, ये पुण्यात्मा है ब्रह्मा जी विष्णु जी शिव जी, ये बहुत ही कम झूठ बोलते हैं, तो उसने कहा मीरा बाई हमारे से ऊपर तो बहुत बड़ी प्रबल शक्ति है और उसका भेद हमने बिना पा लिया हमने खूब तपस्या कर देख ली वो नहीं मिल सकता उसकी तो ट्राई व्यर्थ है। अब मीरा बाई का धक देसी हुई कि भाई संत कहे थे वह सच्ची है कोई और शक्ति है और ये कहे वो मिल रहा है कोई नर वो कहे मिल रहा है। उसे दिन त्याग दिया कि महाराज आगे अगले दिन सत्संग के अंदर चरण पकड़ दिया परमात्मा के हे भगवान मुझे रास्ता बता दो मुझे तो मोक्ष चाहिए। परमात्मा ने बताया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी जन्म मृत्यु में ये पार नहीं है तुम इनकी असाधना करके पार कैसे हो जाओगे। कहते हैं एक का चोट से दारिया जिन मिलना दाचा एक का बात खटकगी उस पर क्योंकि उन्होंने भगवान चाहिए था बकवाद थोड़ी। अब वो ठाकरों की लड़की थी परमात्मा ने सोचा सबसे देखो भक्ति तो आम आदमी कर ले जैसे खेती बीज दी और उसमें खरपतवार नरा उग गया तो क्या फायदा होने नहीं देगा भक्ति उसको उस खेती को तो पहले वो खरपतवार सारा साफ करना पड़ता है किसान ने जब वो बीज जमा बढ़िया फसल होती है। तो परमात्मा ने सोचा यह ठाकुरों की लड़की है और जात पात बहुत मान्या करें और जरा सा भी मन में यह दोष आ गया क्योंकि हम ऊंच नीच छोटा बड़ा ये तो हमारी यहां की अज्ञान सोच है आत्मा और कोई छोटा बड़ा नहीं होती कोई ऊंच नीच नहीं है। परमात्मा के विधान अनुसार ऊंच नीच इस विध है लोई कर्म कुकर्म कहां में दोई बुंडे कर्म करनिया पाप करनिया चोरी जारी ठगी बदमाशी व्यसन करता है दारू शराब मांस तंबाकू को पीता है ये तो नीच है वो किसी जाति मजहब से है और अच्छे आत्मा है जो भगवान की भक्ति करते हैं डर कर रहते हैं चोरी ठगी नहीं करते हैं जारी नहीं करते हैं किसी की आत्मा नहीं दुखाते हैं वो उच्च आत्मा है वो किसी भी मजहब धर्म जाति से है। तो रविदास जी चमार जाति से थे और चमार जाति चमार का काम ऐसा था कि पशु मर जाते थे मरे हुए पशुओं का खुद ही चाम उतारा करते थे खाल उतारते थे तो उनका हाथ सारे मांस में खून में धस जाते थे कपड़े भी खराब रहते थे नाना धोना ऐसा था को नहीं कोई साबुन पानी विशेष होता नहीं था मैले कुचले कपड़े रहते थे। तो धीरे धीरे समाज में ऐसे नफरत बनती चली गई ये तो खराब कपड़े हैं दूर बैठ फिर वो चमार जाति पाए की चाहे कितने सुथरे कपड़े पहन रहे हो फिर भी नौके दूर बैठ चमार से थे यानी इस तरह की धारणा बन गई थी। तो चमार जाति को और विशेष हे दृष्टि से देखते थे। तो कबीर जी ने सोचा ला इसकी पूरी परीक्षा ले लेते हैं जब भगवान आत्मा होगी तो ठीक है ना तो बनी रहेगी ठाकुरानी हमें के लेना देना। तो परमात्मा ने कहा बेटा जाओ वो बोले जी मुझे मेरा कल्याण बताओ क्यों करोगा। कबीर जी ने कहा कि जा वो बैठा सामने भक्त उससे पूछ ले तेरा वहां कल्याण होगा और उससे उपदेश ले ले। अब वो रविदास जी के पास गई और प्रणाम किया कि महाराज जी मुझे उपदेश दे दो। वो तो उनकी बतलाई हुई बात थी कबीर जी की रविदास जी की। रविदास जी कहने लगे बहन आप मेरे से उपदेश नहीं ले सकती क्या बात कि मैं तो ठाकरों की लड़की मैं चमार जाति से संबंध रखता हूं मैं चमार हो गए। मीराबाई ने कहा महाराज मुझे नाम दे दो मुझे कल्याण चाहिए आप मेरे भगवान मैं आपकी बेटी मुझे उपदेश दे दो। अब रविदास जी ने सोचा था फटक जाएगी जाती रहेगी फिर उठ का आया कबीर जी के पास अब भगवान वो तो का नाम दे दो और इन्हों बोला दे दे फिर इन्हों बोला मुझे तो आदेश नहीं है नाम देने का। परमात्मा बोले मैंने आदेश दे दिया तो इस लड़की को नाम दे जा। अब प्रथम मंत्र मीरा को दे दिया वहां रहे परमात्मा रह कर आते रहे कभी दो दिन सत्संग कर जाते कभी एक हफ्ता रुक जाते फिर आते रहते दोनों जने। तो मीरा बाई जो है उसके बाद मीराबाई ने यह सत साधना की। अपने आत्मा जैसे ये दास पहले हनुमान का पुजारी था श्याम जी का पूजा करते थे विष्णु जी की पूजा इष्ट रूप में करते थे तो घर में जो भी सुख होता था जिसको हम सुख मानते हैं जैसे भाई नौ पास हो जाते थे पढ़ाई में शिक्षा में, तो अपने श्याम जी को सारे तनों का अर्थ है भगवान भला होते रहा है, भगवान भला होते रहा है। श्याम जी ने पास कर दिया, हनुमान जी ने पास करवा दिया, भगवान श्री कृष्ण की दया होगी। तो ऐसे ही फिर नौकरी लगी, संतानोत्पत्ति हुई, उससे भी नो सोचा करते ही इन्होंने मौज मचा रखी। ये पता चला परमात्मा कहते हैं जगत का पेखना पेख्या धनी का नाम ना लेखा। इन औरों को क्रेडिट देते रहे, भगवान को तो याद भी ना किया जो सब कुछ कर रहा था हमारा। जैसे टटीरी थी, टटीरी एक पक्षी है टटीरी, उसने मां भारत कुरुक्षेत्र के मैदान में अंडे पैदा कर दिए। उसने तो अंडे उत्पन्न कर दिए, उधर से महाभारत के युद्ध का संयोग, दोनों तरफ से सेनाएं आकर खड़ी होगी। वह टटीरी बैठ कर वृक्ष पर, टटीरी जमीन पर अंडे उत्पन्न करती है, थोड़ा बहुत घास भूसा इकट्ठा करके बोझड़ी श्याम। तो उसने वृक्ष पर बैठ कर देखा, उत्तर की दुनिया बहुत ज्यादा, दोनों सैनिक आ गए और अग्निबाण इनके हाथों मर्द नाश होगा। तब उसने पुकार करी परमात्मा से, हे भगवान मेरे बच्चों को रक्षा करना, हे भगवान मेरे बच्चों की रक्षा करना। कहते हैं परमात्मा, अब वह कौन सी किसी इष्ट न जाने थी, ना कृष्ण की पुजारी थी, ना शिव जी की, ना किसी और की। उसने तो वैसे पुकारे की थी, हे भगवान मेरे, सभी करते हैं वैसे तो, लेकिन जिसके पूर्व संस्कार होते उन्हीं की रक्षा होती है। तो परमात्मा कबीर जी ने कहते इंद्र के हाथी का एक घंटा, अंदर टाली घंटा बंधा होता गले में, बाजता चला गया जैसे मंदिरों में ये घंटी होती है इस तरह, वो बहुत बड़ा होता है था, तो वो ऊपर से टूट के उनका ऊपर गिर गया। 88,000 मण का बताओ, 88,000 मण, वो इतना मजबूत था। तो कहते हैं वहां सारा महाभारत हो गया, अग्निबाण छूटे, 18 करोड़ सेना मर गई, लेकिन वो अंडे सुरक्षित रहे। फिर वो घंटा उठा के देखा उन्हें बाद में, भाई के है ऐसा भारा देखा दो, उसमें अंडा में तो बच्चे हुए पाए। अपने आत्माओं ये विचार करना है कि वहां रक्षा किसने की, पूर्व संस्कार से पूर्ण परमात्मा ने ही उन अंडों की रक्षा करी। वह तो किसी देवता में ना पूजा करती, ना जानती थी कौन भगवान है किसा है, उसने पुकार ही की थी। तो पुण्यात्माओं इन बातों से हमने घने उदाहरण लेने हैं, घनी शिक्षा लेनी है। कैसी लेनी है? एक तो ये है कि जैसे आपने नाम ले रखा, बालक ना ले रहे, आपके बच्चों ने उपदेश नहीं ले रखा, तो आप भक्ति कर रहे हो, और रह रहकर आपके बच्चों पर कोई आपत्ति आती है तो आपकी आत्मा पुकार करती है, हे भगवान इसको ये ठीक हो जाए, मेरा बेटा न्यू हो जाए, बेटी का छोरा हो जाए, बटेऊ शराब छोड़ दे, यानी इस तरह की हमने कामना स्वाभाविक है, करनी पड़ती है। तो आपकी पुण्य कमाई उन बच्चों को सुख देने में डाइवर्ट होती है, डिवाइड होती है। तो इस प्रकार परमात्मा ये चाहते हैं कि पूरा ही परिवार यदि मालिक के चरणों में आ जाए, तो आप जी का जो लीकेज है ना, वह लीकेज ना रहे। और लीकेज किसी चीज की हो वह हानि करती है। एक टायर में थोड़ा सा पंचर हो जा, वो एक कंडम कर दे, तो हम पंचर गणे करें रखा है एक नहीं, और बाट देखा हम परमात्मा के जल्दी ही पहुंच जाएं। लेकिन तरीका यही है, अगर कतीय भक्ति ना करा तो आप भी मरे और बालक भी दुखी होए। कहने का भाव ये है दास का कि आप जी ने पूरा भरसक प्रयत्न करना चाहिए कि जिससे आप जुड़े हो, जैसे बेटी ब्याह दी परिवार जुड़ गया, पोता दोता दोती हो गए या पोता पोती हैं, इन सब को कोशिश करें मालिक के चरणों में ला दे और कहें बेटा तुम अपनी भक्ति करो। अब जैसे किसी ने अपने टायर में हवा भर रखी है और दूसरे का पंचर हो, वो टायर की हवा निकल गई, और अपने टायर में तो उसके टायर में हवा तो डाल सके पर दोनों कंडम हो गए। अब टायर से टायर में हवा भरना कौन सी समझदारी है? या तो पंप ले, आप भी पंप रहे, दूसरे ने मिले बेटा पंप ले भाई और भर ले अपने टायर में, आप वावर दोनों काम चला। तो हम अभी तक यही करते रहे, यो काल का जाल है कि जैसे अभी तक है पगड़ी पर था कि बाप मर जाता है बड़े बेटे का पगड़ी बांधते हैं। जैसे एक बताव था कि इस घर में एक परंपरा चली आ रही है कि इनका दादा झाड़े लाया करे, किस चीज के लाया करता मेरा ध्यान को ना, और वो मर गया, फिर बड़े बेटे को दे दी उसने आशीर्वाद, फिर उसकी पगड़ी बांध दी, फिर ईबो झाड़ी लाता है उससे भी लाभ होने लग गया। तो क्या था कि वो मरे पाछा भूत बन के बेटे में आ जाता है, वो रही खी कमाई हुआ फिर झाड़ी जाता है अपनी पिछले जन्म जन्मांतर की, यानी कति ऐसे भट्ठा बैठ जाता है। तो कहने का भाव ये है कि इस प्रकार उस टटीरी ने जो पुकार की उसके पुण्य गए, रक्षा करी परमात्मा ने आके। तो ऐसे हमने परमात्मा की भक्ति करनी है और उसमें श्रद्धा से लगना है। अब क्या हुआ, अब मीराबाई जो है अपनी भक्ति करने लायक गई, सत भक्ति का पता लग गया। अब उधर से राणा और ज्यादा सख्त हो गया, उसका देवर रोज प्रार्थना रोज मतलब वो उसने ये तो छक लिया कि मारे तो मरे को नहीं, इसका ट्रीटमेंट कोई मेरे पास रहा को ना, और इसने बेइज्जती घनी करवा दी। तो पुण्यात्मा उसने उस मीरा की मां को बुला लिया। बेटी जो है मां की बात को अवश्य स्वीकार कर लेती है जैसी उनकी सोच थी। उसकी मां से को बुलाकर कहा कि मौसी तो इसने समझा दे, इसने हमारी इज्जत का नाश कर दिया। पहले तो मंदिर में जाया करती, इवरात ने सत्संग में जा हुआ पता नहीं और कोई गुरु बना लिया। तो मां को समझाकर अपनी बेटी ने सोतरे से तरीके सब अपना के बेटी वहां ना जा कर दुनिया के एक होगी बूंदी अच्छी कह है, मारी भी बेचती है बेटी, इस घर की भी बेचती, दोनों तरफ से ऐसे ऐसे है। अपुण्यात्मा इसको कहते हैं, कबीर साहब जी कहते हैं, मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु कान, संत दर्शकों जब चले ये अटकावे आन। आन माने आके, आन कहते हैं मात पिता, सुत माने पुत्र स्त्री पत्नी, और आलस के तीन दिन का सत्संग से छुट्टी भी ले ली, कल चलांगे, कल आज तो नींद सी आवे है, वो कल नहीं हुआ करता पूरा जिस पे, वो तो आज करें पार पड़े, कल पे नहीं छोड़ इस काम ने, यू आलस। एक भक्त बताओ था ने बोला जी, पहले हम 7 दिन का सत्संग करते शुरू शुरू में, उसने नाम ले रखा कई लाभ उसके लगातार हो गए, उसका बड़ी रुचि बन गई, तो उसने 7 दिन की छुट्टी ले ली। अब छुट्टी भी लिया, छुट्टी मिल गई परमात्मा की दया से, तो उसने सोचा 7 दिन है कल देखूंगा, कल चलेंगे, अच्छा जी कल चलेंगे सत्संग में। अगले दिन उसका बहन हो ही आ गया, बाण का बेटे पति, बहन का पति, और उसने कोई भैंस लेनी थी, कहने लगा मुझे भैंस दिलवा, कि रिश्तेदार ने नोबिना कह भी क्यों ना दिलवाऊ, पहले तो गांव में धक्के खाए सारा, एक दिन तो वहां लग गया नहीं कोई समझ में आई, फिर दूसरे गांव में गए, उन्होंने बताया उस दूसरे तीसरे गांव में, यानी 7वें दिन 7 दिन हम 6 दिन लगातार किता तो किसी के कहां लौटे, किता सोए, किता पड़े डांगरा में, जहां जिसने जिस जगह दे दी, 7 दिन धक्के खाके बिना भैंस लिए उल्टे आ गए दोनों, भैंस का सूत नहीं बैठे, और वो सत्संग भी गया। उस दिन पाछा कान पकड़ दिया मैंने, भाई आज के बाद जिस दिन छुट्टी मिलेगी उससे दिन जाऊंगा, यानी 7 दिन कहां तो अमृत वर्षा में आना था जब पहले दिन आ जाता, और कहां फिर धक्के खाता अंडा भैंसा के गोबर में हाथ रखे। तो इस प्रकार तो आलस कहते हैं मात पिता, जैसे छोटे बालक हैं उनको मात पिता वादा करेंगे धमकाओगे ना कि करेगा तीसरे दिन बाद जाए, और किसी की पत्नी किसी का पति, फिर बंधु कान भाईचारा लोक लाज, क्योंकि इस काल तक सब तरह से इंजेक्शन लगवाता है, सब तरह वादा करवाता है, आप सत्संग में आते हो पड़ोसी ऊ तो देखकर राजी नहीं, और नू आओगा पाछे नू कहगा बता ये भी कोई बात हुई थर तीसरे दिन चले जाए सत्संग में, नो घर बस या करे, यानी दूनी इंजेक्शन ला जाएगा वो घर, फिर लड़ाई हुआ घर न जाओ जो। तो परमात्मा कहते हैं जो इस तरह की जो फिर लोक लाज में नहीं मानता है, भगवान की भक्ति करता है, रोक क्या नहीं रुकता है, कहते इनका रोक क्या नहीं रुके इनका अटकाया ना अटके जो संत दर्शकों जाए, कहे कबीर सो संत है आवागमन न सावे। तो संत निरु क्या करते, उनको समझ में आ जाती है बात, कहते अकल अलूणे दीखते ये सर्व अकल के मूल, और सदा रटे हरि नाम को ये झूले अन झूल। एक भक्त का हम पाठ करने गए, परमात्मा की ऐसी कृपा पुण्यात्मा, और दास जब इस मार्ग पर लगा, दास को आदेश दिया मेरे पूज्य गुरुदेव ने कि बेटा नाम दिया कर और इसको आगे बढ़ा मार्ग को। माइनस जीरो थी या भक्ति माइनस जीरो, गांव गांव में घर घर में तीन तीन दिन जाकर पाठ किए, सत्संग किए, हवन किए परमात्मा की दया से। और ऐसी कृपा होती थी कि सब दुखी हो रहे हैं कि से हर तरह की पूजाएं करके छक चुके हैं ये लोग, तो जो भी नाम लेता था सच्चे दिल तक लग जाता था। पहले हम संपर्क में ज्यादा रहा करते थे, थोड़ी संगत थी, लगातार जाते थे, उनको मर्यादा भंग नहीं होने पाती थी, तो निर्य लाभ होया करते उनको। इवताओं है दस नाम लेके गया, फिर अगले दिन कर नाम टूट गया, अरे महीने पहले नाम ले गया था, इतना जल्दा तोड़ भी दिया। तो नाम लेने से पहले खूब सोच कर नाम लिया करो, और नाम लेने के बाद खंड नहीं होना चाहिए। फिर देखकर हाथ मार लेके, तो उनके पाठ करने गए, उनका कई लाभ हुए। शराब पिया करता उसके पति, वो भी छोड़ गया, बच्चे भी खूब अच्छी तरह बीमार थे वो स्वस्थ हो गए, और भी कई लाभ हुआ। उनके पाठ करे थे, छह महीने हो गए थे उन्हें नाम लिया। उनका एक बहन का बटे हुआ गया, बहन का पति, और वो शराबी कोती एक नंबर का, तो वो सीधा वहीं आया उनके द्वार पे। तो बच्चे थे छोटे, उन्हें पता था मारे शराब पी के घर में नहीं बढ़न देंगे किसे, उन्हें पता था शराबी है उनका फूफा जी, उसकी पकड़ का हाथ, वो लड़का था 8-7-10-1 साल का, उन ले गया दूसरे चाचा को छोड़ गया, अकाड़ा पड़े यहां रुक तो पी का रहा शराब, तो उनके छोड़ दिया, और खाना हम भिजवा देंगे तेरा यहां से, सत्संग हमारे यहां चल रहे जैसा भी। तो उन्होंने फिर उसके इंजेक्शन ला दिया, उनकी शराब उतरे पाच है, सुबह उस समझाया को तो भाई फंड कर रहे हैं उसका चाचा का है और नाश करेंगे, इन्होंने 2,500 रुपये लाग जाए इस पाठ पे। पहले हम जाते थे इसे 2,500-2,500 रुपये खर्चा आता था, उन्हीं का तो सिर्फ खाना खाना खाते थे, किराया भी नहीं लेते थे किसी से, क्योंकि दास की सर्विस थी, और सैटरडे संडे ऐसे तीन दिन शुक्रवार हम पाठ करते थे, शाम ने शुक्रवार को चला जाता, दो दिन की छुट्टी होती थी, पाठी पाठ वहां करवा करने वाले और भगत होते थे। तो रिश्तेदार को उसने, उसके चाचे ने पूरे इंजेक्शन ला दिए, वह नाश करेगा, 2,500-2,500 रुपये ला दिए इसने, और ऊपर चौबारे बना रखे हैं, उनके कुआड़ ना चढ़वाए, 2,500 में तो कुआड़ चढ़ जाते दरवाजे। अब हम तो आ गए, वो दो उस दिन तो बढ़न नहीं दिया, उस दिन अगले दिन भोग लगना था, हम भोग लगा कर आ गए। वो बताऊं तो जी पाछे आया उस रिश्तेदार, हमने शिक्षा दे आप दारू पीवे, नो कहे थारा पर 2,500 रुपये खर्च कर दिए, ऊपर कुआड़ क्यों ना चढ़वा लिए, दरवाजे क्यों ना चढ़वा लिए, 2,500 में है ये पड़े। तो वो कहने लगे हम ना सी आवे आप दारू पियो, और हमने शिक्षा दे देख नालायक, पर हम क्यों माना थे उसकी, हमने कहा कुआड़ भी चढ़ देंगे, हमारी केबरियान माटी हो रही थी, साल में 10-10 हज़ार तो दवाइयां लग गया करते औषधियों के, और हम सुख हो गया हमारे घर में, समझा बुझा दिया, पर वो नहीं माना। तो कहने का भाव यह कि इस तरह के भी बहुत से लोग होते हैं, तो वो लोक लाज में हमने मानना नहीं चाहिए। अपुणात्मा जैसे एक आड़ी बीज बोया था गेहूं, और एक बाबूजी आ गया बड़े शहर में जन्मया, उसने कभी ये देखा ही नहीं था कि गेहूं कैसे पैदा होते, उसने अपने घर में बोरी में गले गेहूं देखे, और माँ उसने पिसवा कर रोटी बना देती थी, उसको ये नहीं पता था गेहूं कैसे उत्पन्न होते। उसकी नौकरी लग गई रूरल क्षेत्र में यानी गांव में, वो पहली बार जा रहा था, एक किसान गेहूं मिट्टी में डाल रहा है यानी बीज बोए, एक थैले में डाल रखे और कुछ रखे और एक कोने में। अब वो बाबूजी देखता रहा भी यो आदमी मेंटल है के खान की चीज नर मट्टी में गिरा मूर्ख। अब वो देख रहा उसने खड़ा खड़ा काफी देर देखता रहा। अब किसान ने सोचा ये कोई वैसे खड़ा हो गया होगा गेहूं देख रहा बैलों को चलतों को। फिर उसने हाथ कराया भी रोकिए बैल वाले रोक, कहा जी क्या बात है, कि तू मूर्ख है क्या? आली ने सोचा था को रास्ता पूछता होगा, यू अच्छा उल्टा बोला। ने बोला तू मूर्ख है क्या, क्या बात? अरे भले पुरुष, हिंदुस्तान में पहले ही खाद्य सामग्री की कमी है, ये है वो, अलग अटपट कर, और तू मिट्टी में गेहूं डालने लग रहा है, तेरा दिमाग खराब है? क्यों बर्बाद कर रहा है? तो गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, बड़े साफ सुथरे तो टैंकी वैंकी में रखने चाहिए। अब वो किसान तो उसने सोचा ये बंदर कितना है गया कि बन डेख डेख डे। किसान ने तो वो शहर आला मूर्ख लागे, और उस शहर आले ने किसान मूर्ख लागे कि मूर्ख तो ना लग रहा बर्बाद कर, फसल गेहूं को मिट्टी में खराब कर रहा है। वो किसान समझ गया कि वो तकती इसने पता को ना बाबू जी ने शहर का रहने वाला। फिर उसको समझाया कि ऐसे ऐसे है भाई, अब मैं 40 किलो लाया हूं एक एकड़ में बोऊंगा, और ये फिर 60-70 मण बन जाएंगे, एक मण लाया हूं 70 मण होंगे इस किलो में, इस किले में। इवा उसका समझ में आवे नहीं, क्योंकि वो प्रोसीजर से परिचित नहीं। बोला ना क्यों बकावा है नो यार, माटी में दगल जाएंगे, तीसरे दिन देख लिए। अब किसान उसकी क्यों कर माने? किसान कैसे माने उसकी बात को, वो चाहे ना माने किसान की, वो दूसरी बात है। फिर किसान ने कहा तो 4 महीने बाद आइए, आपको दिखाऊंगा कैसे ये कई गुना होते। तो सारा कहने का भाव ये है कि वो गेहूं, अब किसान तो ये अपने प्रोसेसर से परिचित था, अपने व्यवसाय से, वो उसके कहने से रुक नहीं सकता। आखिर में उसने मानना पड़ा, उसको बताया कि देखो एक दाने से अब ये गुच्छा बन गया, और प्रत्येक का बाल लागी, और प्रत्येक बाल में 50-60 गेहूं ऐसे भगवान देता। तो ऐसे ही ये दान जो आप करते हो, आपका किराया भी भगवान के दान में गिना जाता है, यहां तक का आने और जाने का। अब जिसने ये ज्ञान नहीं तो वह इन्हों सोचे हैं कि ये तो नाश करेंगे, तीसरे दिन सत्संग में जाते हैं, आजकल इतना महंगाई हो रही है और किराया भाड़ा भी नहीं देखते ये। तो पुण्यात्माओं, हम नहीं मान सकते उस किसान की तरह, वो तो अनजान है। किसान को उस बाबूजी ने कहा कि तू बर्बाद हो जाएगा ये गेहूं मिट्टी में डाल, उसने कहा था बर्बाद नहीं, ये मुझे आबाद करेगा ये प्रोसीजर जो मैंने अपना रखा। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं, अकल अलूणे दीखते ये सर्व अकल के मूल, दुनिया ना ताम अकल अलूणे, अकल अलूणे का आग्रह तो मूर्ख कति जिसने कुछ भी ना बेरा हो। समाज जिनको ज्ञान नहीं है वो सोचते हैं तो मूर्ख हैं, और आप सर्व अकल के मूल, यानी वो तो सर्व अकल के मूल, उन सब तरह से परमात्मा का ज्ञान हो चुका है, इसलिए सत्संग में आते और दान किया करते हैं। इस प्रकार मीराबाई ने कभी किसी की परवाह नहीं की, और यदि वो अन्य बहन बेटी वो खानदानी बुआ की तरह और घर ते ना निकलती कुतिया बनती की तरह है, और कोई ना याद करता, मीराबाई का नाम हिंदू समाज में एक नंबर पर है सदगुरु। तो यहां क्या बताते हैं कि इंद्री कर्म न लगे लगारम जो भजन करे निर्द्वंद्रे, गरीब दास जग कीर्ति होगी जब तक सूरज चंद्रे। अब मीरा बाई सत्संग में आने लगी, उसका एक पीतसरा था भवन नाम का पीतसरा, और वो उस राणा का मंत्री था, महामंत्री, और वो बहुत अच्छी आत्मा का था। जब वो राणा परेशान कराया करता उस मीरा को या उसका देवर, तो पीतसरा जाकर महामंत्री और कहा करता बेटा भक्ता के लिए वैसे ही होता है, हिम्मत ना आ रही है, भगवान दूर नहीं है, ये तो मूर्ख है, राज के नशे में इसने कुछ नहीं दिखता, बस अपनी इज्जत इज्जत दिखा बेटी, तो हिम्मत ना आ रही है, भक्ति करे, लगी रह जिसा तो भगवान के चरणों में लग रही है, हिम्मत ना आ रही है। और वो भी भगत था, तो मीराबाई ने उस भवन से कहा कि चाचा जी एक संत आ रहे हैं, और मेरे तो वह बात बहुत समझ में आ गई, आपकी इच्छा तो आप भी उनसे मिल लो जाके। अब बेटी मैं भी मिल लूंगा, मने भगवान चाहिए है परमात्मा से मिले कबीर जी से। उस भवन ने भी नाम ले लिया, दोनों अपना भक्ति करें, चर्चा करें भगवान की। फिर अब वो मानना नहीं, नालायक था राणा, तो राजा बहुत अहंकार में बहुत हो जाता है। मीराबाई ने सोचा या तो रोज परेशानी पैदा करता है यो नालायक, क्यों ना यहां से कि तो और देख लेंगे, अपनी भक्ति कर लेती हूं। घर छोड़ दिया, घर छोड़कर चली गई, घर छोड़ के चली गई। रस्ते में जा रही थी, ज्ञान उसको हो ही चुका था भगवान की कृपा से, परमात्मा कबीर जी की रजा से। रस्ते में कुछ व्यक्ति बैठे थे, उन्होंने पूछा मीराबाई ने कि कैसे बैठे हो आप जी। उन्होंने बताया बेटा यहां एक बहुत तपस्वी महात्मा रहता है इस गुफा में, और वो दिन में एक बार बाहर आता है, हम उसके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बैठे हैं। और ये गेट लगा रखा था, चार द्वार सी बनाकर थोड़ा सा आंगन सा बना रखा था अंदर गुफा के सामने, आगे गेट लगा रखा था, दूर गुफा का द्वार खाली, और वो उससे बाहर बैठे थे। तो मीराबाई बोली मैं भी बैठ जाती हूं, दर्शन करूंगी महापुरुष से। तो वो कहने लगे जी वो औरतों को दर्शन ना देता, औरतों के दर्शन ना करता वो, स्त्री आदमी आदमी दर्शन कराएगा, औरत से वो नफरत करता है, महापुरुष है, बाल ब्रह्मचारी है। मीराबाई बोली भाई फिर तो मैं दर्शन जरूर करूंगी, मैंने तो एक पुरुष सुना है और पुरुष को ना, पुरुष माने परमात्मा, एक सुना, जब दूसरा पुरुष धरती पा रहा तो मैं दर्शन करके जाएंगी, मैं तो उसी के लिए भटक रही हूं। अब वो जब वहां बैठ गई, हट करके अंदर संदेश आ गया कि एक लड़की बाहर बैठी है, जब तक लड़की बाहर बैठी हो वो चूट चूहा बाहर आवे नहीं। तो उन्होंने बताया कि वो ऐसे ऐसे कह रही है कि मैंने तो एक भगवान सुना है, ये दूसरा भगवान कितना है, मैं दर्शन करूंगी फिर पृथ्वी पाया हुआ था। तो वो खटकी उसके, क्योंकि वो भक्त आदमी था, भक्ति ठीक ना मिलने से जैसा जिसने डड़े ढोंड का रास्ता बता दिया वो ढो ही रहा था, उसका वह बात खटकी बाहर आया। अब कहां है वो बहन है, वो खड़ी है। और मीराबाई बोली कि भाई एक बात बता, जब तू भगवान है, पुरुष तो मैंने एक ही सुना है यार, तू अगर इस मट्टी में अंतर मानता है तो आज तक तेरी इतनी बुद्धि काम नहीं करी, स्त्री और पुरुष में अंतर क्या है। पुण्यात्माओं जो आत्मज्ञान हो जाता ना, एक तो तत्व ज्ञान एक आत्मज्ञान, आत्मज्ञान का अर्थ होता है कि तू कौन है, क्या है, ये पुतला किस चीज से बना है। जैसे पहले हम सांग देखने जाया करते, सांग देखने जाते थे तो लड़के ही लड़कियों का रोल किया करते थे, स्त्रियों का रोल भी पुरुष ही करते थे। तो एक कोई व्यक्ति सांग देखने गया, अगले दिन उसका साथी उसके साथ चला गया, उसने कभी देखा नहीं था सांग। तो वहां लड़कियां थी, वो लड़के लड़कियों का रोल बनाकर ड्रेस पहनकर डांस कर रहे थे, जैसे भी एक्टिंग कर रहे थे। वो जो पहली बार लड़का गया था वो अपने मित्र से कहता देख कितना अच्छा डांस करती है लड़की, बहुत अच्छा गाती है। वो को बोला लड़का है ये, लड़की को ना, वो पहली बार गया था वो ना मानना कि ना देखिए कति लड़की है। फिर वो जब वहां अपना अभिनय पूरा करके जहां वो रुके हुए थे वहां गए, वो साथ साथ वो दोनों से ले गए बच्चे, वहां जाकर उन्होंने अपने सारे कपड़े वो आर्टिफिशियल अंग लगा रखे थे वो उतार के खुट्टी बटेंग दिए। तब उस लड़के ने देखा रहे तो सचमुच तक उंगर था, ये तो लड़का था, मैं इसने लड़की मान रहा था। तो अगले दिन जब वो सांग में देखनेगा तो उसके मन में भी कोई ना लड़की है, उसने लड़का ही दिखा था, बेशक नाचे था कूदा था सौ फंड कर रहा था। तो पुण्यात्मा जब आत्मज्ञान हो जाता है, आत्मा के ऊपर ये दो कवर चढ़ा रखे, स्त्री और पुरुष के दो कपड़े डाल रखे। तो जिन्होंने ये सांग देख लिया, वास्तविकता पता लग गया, तो फिर उसके मन में दोष नहीं आना चाहिए, आता आवे को ना चाहे कोशिश कर ले। तो उसकी चौंध तोड़ी पहला तो मीरा ने, कड़ेगा बना बैठा तुम पुरुष अपना पीछा छुटा ले, चल मरी गेला नाम ले ले गुरुदेव से, उसकी चौंध तोड़ी। अब मीरा भाई कहते वृंदावन में जाकर रहने लायेगी, वह एक अच्छा व्यवस्था सी बनी हुई थी, साधु भक्त रहते थे, कोई परेशान ना करता था, इसलिए अपना वहां टाइम पास करने गई थी। उधर से क्या हुआ, मीरा भाई के चले जाने से वहां उस राजा के राज में काफी आपत्तियां आएगी, अकाल गिरन लग गया, अकाल मृत्यु होने लगी, बहुत सी परेशानियां उसका सामना करना पड़ा। तो उसने जंतर मंतर करने वाले बुझावा जा पढ़ने वाले ये जोची जाची बुलाए पूछा, उन्होंने बताया कि आपने कोई संत दुखी कर दिया और वो आपका राज छोड़कर चला गया, इस कारण से आप पर ये आपत्तियां शुरू हो गई। तो उसने मंत्री भी वहां बैठे होते हैं, भाई ऐसा कौन संत था मैंने दुखी कर दिया, कौन चला गया, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं। उनका जो वजीर था भवन, वो कहने लग गया कि मैं बताऊं कौन था, कि वह मीराबाई वो पूर्ण वो संत है, वो भगत थी, वह इतना सता दी और उसके जाने से दिक्कत आई। तो कहने लगा भाई फिर क्या इलाज हो, वो जंतर मंतर करने वाले जो अच्छी कहने लगे वो वापस आवे तो तेरा राज में सुख हो, ना तो नहीं होगा। अब वो क्या सोचने लगा भी मैंने तो बहुत परेशान कर दी थी, अब तो आएगी ही नहीं। तो उसने कहा भी कोई उस मीराबाई को ला सकता है, दो सिपाही खड़े हुए सैनिक, क्योंकि वो भी मीराबाई के पास बैठा करते थे और रोया करते थे जब उसके दुख में दुखी होते थे, मीराबाई की उनके प्रति बहुत हमदर्दी थी। तो उनको ये विश्वास था कि बहन हमारे प्रार्थना को अस्वीकार नहीं करेगी, उन खड़े होकर कह दिया जी हम ला सकते। तो कहने लगे वह जब ना आई तो, वो बोला राजा कि वो नहीं आई तो क्या करोगे जी, हम भी नहीं आवेंगे। अच्छा जाओ तो, अब वो चले गए। मीराबाई से कहा बहन हम आपसे बहुत आशा लेकर आए हैं, वहां बहुत ज्यादा दिक्कत होगी है और एक बार आप चलो, हम कसम खा कर आए हैं कि आप नहीं चलोगे तो हम भी नहीं जाएंगे। तो मेरा भाई बोली भाई मैं मर गई होती तो किसने ले जाते, अब फिर तो हम चले जाते, भाई आप मर ही गई होती तो फिर तो हम कह देते। बोली डट जाओ थे। अब मेरा भाई ने परमात्मा को याद किया, वहां श्री कृष्ण की एक मूर्ति थी, उस मूर्ति में समा गई, वह खत्म हो गई, एक कपड़ा कपड़ा छोड़ दिया शेष, एक तो ओढ़ना होता चीर है, बाकी उसके अंदर समा गई। अब वो फिर देख लिया वो तो रही नहीं, तो वापस आ गए दोनों खाली हाथ आ गए। सभा लगी, राजा बैठा था उधर से, वो मंत्री महामंत्री वजीर भी भवन भी बैठा था, भवन नाम था उसका, वो भी सच्चा भक्त सच्ची भक्ति करता था परमात्मा की, सिद्धियां आ गई थी उसमें भी। अब दरबार में वो दोनों सैनिक आए, राणा ने पूछा कि ले आए मीरा को, मुंह लटका के खड़े हो गए जी नहीं लाए, मिल गई थी का मिल गई थी, फिर तुम यो कह रहे थे हम भी नहीं आएंगे, कहने लगे जी वो ऐसे ऐसे पत्थर में समा गई, अगर जीवित होती तो हम ले आते। तो क्या बोला वो कि वह बद चलन थी, कोई मुसलमान कर लिया होगा उसने पति और इसलिए पत्थर में समा गई धरती में, जब जानता आकाश में उठ जाती वह भक्तनी थी। तो ऐसा वो दुष्ट इंसान हमेशा ऐसी बकवास किया करते। अब भवन खड़ा हो गया, न बोला रहे नकम्मे, क्योंकि फिर भी राजा बेशक था, बेटा था, चाचा था उसका, वो बेटा तो था वो राणा, न बोला रहे नकम्मे तना शर्म आई कुछ, तो क्या बकवास कर रहा है, एक भगत के बारे में तन ये शब्द कह दिए, अगर कोई आकाश में चढ़ जाए तो मान जाएगा तुम, तेरा कैसा नालायक फिर भी नहीं माना करता। न बोला मान जाए क्यों ना, ऊपर न को चढ़ा डुब डुब जाता ऊपर स्वर्ग न जाती। ने बोला देख मैं जाता हूं। वो बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे, दोनों घोड़े राजा का भी मंत्री का भी दोनों घोड़े तैयार कर रखे थे सेवक ने, और भवन वहां से खड़ा हुआ, तलवार तलवार सारी साथ लेकर जाते थे ना बाहर जंगल में घूमने जाते थे। भवन को कैसे झटका लगा था थोड़ी यह बतानी आवश्यक होगी। ये भवन मालिक के चरणों में लगा, परमात्मा ने कहा बेटा शिकार नहीं करेगा आज के बाद, अग्जी नहीं करूंगा। तो उसने एक दिन इस राजा के साथ गया हुआ था, राजा ने कहा कि इस मृग को तो मारना पड़ेगा मेरा नीठा, उसने वो मृग मार दिया। वो मृग मार दिया तो उसके मृगणी थी उसके पेट में गर्भ था, वो दोनों कट गए, और वो उसका पति मृग दूर खड़ा खड़ा रो रहा, आंखों में आंसू आ रहा, जैसे न सोच रहा हो कि मुझे भी मार दे पापी। तो उसके बाद भवन ने कसम खा ली, दोबारा उपदेश दिया, परमात्मा मुझसे गलती होगी, आज के बाद मैं मारूंगा नहीं। अब उसके बाद उसने के करा कि राजा के साथ जाना पड़े, शिकार भी खेलना पड़े, जाना ही पड़ेगा शिकार में, तो उसने काठ की बनवा ली तलवार और कमर डाली म्यान में। अब दूसरे जो और मंत्री थे वो ईर्षा करते थे, वजीर और फकीर हमेशा आपस में ईर्षा रखा करें, तो उन्होंने एक दिन कान में फूक मार दी राजा का कि यो जो तेरा वजीर है भवन, यो काट की तलवार रखता है और आपने मरवा होगा को तो कभी देख लेना। अब राजा बोला भी नहीं, ये तो मेरा चाचा भी है और कॉन्फिडेंशियल आदमी है, ये बात नहीं हो सकती, ये मेरे से धोखा नहीं कर सकता जी, दुश्मन हो गया तेरा समझ पक्की बात है। तो राणा ने कहा कि अगर इसकी काट की तलवार पा गई आज गर्दन काट दूंगा मैं इसकी, फिर तो शत्रु है मेरा, मेरे साथ तो जाना पड़ता है, मेरी आपत्ति में रक्षा और कौन करेगा, मंत्री ही करते हैं। तो सबको फालन कर लिया राजा ने कि सब आ जाओ यहां पर, मंत्री महामंत्री सब इकट्ठे कर लिए 20-30 जितने थे, और कहा तुम अपनी तलवार निकालो चेक करूंगा, सीधा तो कहे क्यों करे। अब और कहा कि जिसकी भी तलवार काट की मिल गई उसका गर्दन काट दूंगा। अब भवन ने सोचा भाई तो युद्ध आना ही था, कोई बात ना, आज कट जाए कटेगी तो, पर गुरु के वचन से काट नहीं सकता मैं। अब जब सबकी तलवार चेक करता हुआ निकालो, वो निकाल रहे हैं, डालो निकालो डालो, जब भवन का नंबर आया ना, अब उसने पता था काट क्या ठोक रखा मैंने लठी में, उसने न्यू काट दिया, आये हाय इतनी गजब की चमका लगे जैसे बिजली चमका करे, स्टेनलेस स्टील की तलवार निकली उसके अंदर से। अब सब हैरान रह गए, काट की हमने देखी, दो मिनट पहले चेक करी इसकी काट की थी, कैसे होगी। अब परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है कर सेवानी कामे, मन इच्छा फल देवेगा जब पड़े धनी से काम, वहां धनी का काम था। अब भवन जब उसने मीराबाई को अब शब्द बोले एक भक्त को, उस भक्त पर सुने नहीं गए भवन उस पर, भवन कहने लगा तू ना मानेगा भाई, जब आकाश में भी कोई चढ़ जाते मैं चढ़ता हूं आकाश में, और तेरे जैसे राक्षस के राज में रहना भी ठीक नहीं है। घोड़े पर जाकर एकदम चढ़ गया ऊपर और कहते एक सीधी आकाश से उड़ जाई, घोड़े समेत उड़ा लिया ऊपर, अकेले नीच हम जा रहे स्वर्ग में, घोड़े से जा आकाश में, वो भवन गवन गगनों किया, घोड़े से जा गुलाम और सोमिश्री साहिब मिले बरछी सदा लगाम। बोलो सतगुरुदेव। तो पुण्यात्माओं परमात्मा की भक्ति के अंदर, अब यहां भी हमने थोड़ा डिफरेंस करना है कि ये सिद्धि थी, इन सिद्धियों से भी बात नहीं बनती, लेकिन हम इन सिद्धियों से ही परमात्मा की तुलना करते रहे। परमात्मा की भक्ति ये चमत्कार दिखाना जरूरी नहीं होता, परमात्मा की भक्ति सत भक्ति सत मंत्र से ही होगा, जिसके पास सही मंत्र है उसने सिद्धियां क्यों सकता है नहीं, परमात्मा क्यों सकता, ऐसे बेड़ा पार होगा। बोलो सतगुरुदेव।